तो एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो क्या होगा रिलीजन का, वो आध्यात्मिक मत संप्रदाय की भी एज चली गई है। इसीलिए हम लोग को सचेत रहना है कि श्री अरविंद को भी हम एक नया मत संप्रदाय ना बना दे। माने इस बात के प्रति भी सचेत किया है कि वी शुड नॉट स्टार्ट ए रिलीजन इन द नेम ऑफ श्री अरविंदो, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। एक तो वो वैसे भी इतने विशाल हैं कि उनकी टीचिंग को आप किसी एक मत या उसमें नहीं लगा सकते हैं, पर हमको फिर भी कॉन्शियस होना है कि कहीं उनकी टीचिंग्स के आधार पर हम एक मत या संप्रदाय ना बना दें। एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर मतलब मत संप्रदाय इत्यादि के परे एक नई एज आ रही है मैनकाइंड की, एक नई एज मैनकाइंड की अब प्रारंभ हो रही है, जिसको स्पिरिचुअल एज की बात की है माने। और स्पिरिचुअल एज का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वयं को जानेगा इन द ट्रू सेंस, और जब वो जानेगा तो अनंतता, यानी वो किसी भी सीमित विचारधारा या किसी भी सीमित मत या संप्रदाय में बंधा नहीं रह सकता है। और ये हम देखते हैं कि मूवमेंट शुरू हो गया ह्यूमन साइकिल में, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, तो वो बात का विषय। विज्ञान का क्या होगा? तो विज्ञान का भी विस्तार होगा और विज्ञान भी ग्रेजुएट करेगा, और वो भी श्री अरविंद की पोयम है एक बड़ी सुंदर, समय का वो तो हम लोग शायद आज ना पढ़े, साइंस एंड द अननोएबल, ये पोयम है जिसमें श्री अरविंद कहते हैं कि साइंस के अंदर भी एक सत्य की खोज है, तो वो चलती चलती कहाँ मैटर के अंतिम छोर पे पहुंचेगी, फिर वो अकल्ट वर्ल्ड में प्रवेश करेगी, ऑलरेडी कर चुकी है। अकल्ट वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद वो ऊर्जा के क्षेत्र में जाएगी, प्राण जहां से जड़ तत्व आया है, फिर ऊर्जा के क्षेत्र में भटकेगी बहुत लंबे समय तक, ये भी प्रारंभ हो गया है, इसके फर्स्ट बिगिनिंग्स दिख रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में खेलती खेलती वो ऊर्जा के पीछे क्या है, तो वो जाएगी चेतना, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में श्री अरविंद पूरी रूपरेखा दे करके गए हैं। अगर हम श्री अरविंद के एसेज हैं और उसका नाम ही दिया उन्होंने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो नहीं जो ब्रेन से कॉन्शियसनेस निकली है वो नहीं, पर कॉन्शियसनेस में वैज्ञानिकों की रुचि प्रारंभ हो गई है, और ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अब ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस ओरिजिन है ना कि बाई प्रोडक्ट है ब्रेन का, मानने लगे हैं और बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। तो एक बार चेतना के क्षेत्र में आ गई साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो नेक्स्ट लीप क्या होगा, बीइंग अनोएबल, आप चेतना के द्वार से ही जाकर के ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, अगर विज्ञान के प्रोसेस को लेके चले। तो ये भी प्रोसेस शुरू हो गई है और वी कैन पार्टिसिपेट इन इट। विज्ञान चेतना का विज्ञान तो हमारे यहाँ था ही और भारतवर्ष में ये आना चाहिए। और मैं बिफोर आई प्रोसीड, ये मुझे अजीब लगता है कि हम लोग भारतवर्ष में विज्ञान का हमारा एक इनोवेटिव अप्रोच होना चाहिए। कुछ एक जगह हैं जहाँ ये कॉन्शियसनेस स्टडीज बोल के प्रारंभ हुई हैं, फॉर एग्जांपल निमांस है बेंगलोर में, वहाँ उन्होंने एक प्रॉपर कॉन्शियसनेस स्टडीज बोल के प्रारंभ किया है, एक सीमित क्षेत्र में गया था मैं, वहाँ उन्होंने बुलाया था गेस्ट लेक्चर के लिए। वहाँ पे उन्होंने क्या शुरू किया है कि जिसको हम कहते हैं अचेत है, तो अचेत जब व्यक्ति है तो वास्तव में अंदर उसको कुछ भी महसूस नहीं होता या कुछ होता है, तो जो स्टडीज की उन्होंने पेट स्कैन वगैरह से, और कहा कुछ कुछ होता है, ब्रेन सिग्नल्स रिसीव करता है वो, हालांकि वो सुन नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और इससे एक बिल्कुल नया तरीका उपजता है डीलिंग विद अनकॉन्शियस पीपल। आपको लग रहा है वो अचेत है, अरे ये तो अचेत हैं, ये तो अचेत हैं, ये तो अचेत हैं, क्या करना, दुखी हो रहे हैं, लोगों ने कार्ड बांट दिए कि इनकी मृत्यु होने वाली है, आ जाइए, ये सब पिक्चरें भी बन गई इस पर, लेकिन अचेत के अंदर भी चेतना विद्यमान है, बाहरी सरफेस कॉन्शियसनेस से विड्रॉ कर गई है। और मेरे इसके साथ बहुत सारे अनुभव जुड़े हैं पेशेंट्स के साथ जो डेथ के उसमें जा रहे हैं। तो इसके अल्टिम कंक्लूजन क्या होगा, डेथ इज नॉट द एंड, क्योंकि कॉन्शियसनेस एनर्जी इनका तो विनाश नहीं हो सकता, जड़ तत्व का हो सकता है। तो वो चेतना का क्या होता है जो व्यक्ति के अंदर थी, क्या वो भी कहीं एक हब में जा करके, जैसे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, शरीर एक हब है, एक पात्र है जिसके अंदर ये चीज़ें आती हैं और जाति भी हैं। वैसे ही क्या हमारे अंदर भी चेतना का एक गुह्य केंद्र है जहां दुनिया भर की चेतना उसकी अलग अलग अवस्थाएं प्रवेश करती हैं और उसको पोषित करती हैं। अगर हमने ये प्रश्न कर लिया तो साइकिक बीइंग जानना इवन विज्ञान की दृष्टि से दूर नहीं है, और उसके बाद वो तो विनाश नहीं हो सकता चेतना का, तो फिर उसका क्या होगा? फिर वहां रीबर्थ इन सब चीजों में आएंगे ही आएंगे। विज्ञान ऑलरेडी इस दिशा में प्रवेश कर चुका है। जो लोग ये कहते हैं कहाँ है नया एज, नया एज क्यों? क्योंकि वो लोग अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे सुबह उठ के हमारे पाँव नहीं छूते। अब वो चला गया वो एज ऑफ रिलीजन जैसी बात हुई है, एक नई चीज प्रकट हो रही है। तो अभी हम लोग उसमें और ना जाके, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो कुछ शिव जी के बारे में पढ़ने, और वो प्रश्न है एक जो बड़ा सुंदर, इसमें उसका उत्तर भी है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे ये दुनिया बनाई, बनाई क्यों? पहले तो ये प्रश्न जो है ना, ये भारतीय मानसिकता का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न जिस फिल्म में आया है, मैंने वो पिक्चर देखी भी है, और ये एक उस मानसिकता का प्रश्न है जहां भगवान वहां है और सृष्टि यहां है। एक द्वैतवाद की जो एक्सट्रीम टेंडेंसी है कि वो दोनों एक नहीं है ना मिल सकते हैं, तो उसने बनाई और हम यहां फंस गए। भारतीय मानसिकता क्या कहती है? वही यह बन गया। हाँ, वो आप कहेंगे सोहम अस्मी, द सेल्फ देयर एंड द सेल्फ हियर आर वन, तो ये तो प्रश्न ही डिसमिस कर दिया कि भाई उसने बनाई नहीं, वह बना, तो हम कौन है? वह बना, तो अब हम ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम करने को नहीं बचा। हमें कहना पड़ेगा कि ये प्रारंभ क्यों हुआ, ये प्रश्न उचित है कि भाई ये प्रारंभ ही क्यों हुआ। प्रारंभ हुआ तो हम सबका उसमें आना, हम भी वही उसी वही ये मास्क पहन करके खेल रहा है। एक शेरविंद की कविता है, उसमें एक लाइन है, लीला इन अस इज द थाउजेंड फोल्ड बीइंग हु इज वन। वही जो बहुरूपिया नाना रूप धारण करके खेल रहा है, हमारे अंदर भी है। पोयम का नाम है लीला, तो उसमें उसका बड़ा सुंदर एक निरूपण है। लेकिन आज हम लोग इसको शिव जी के अंदाज में सुनेंगे, ना कि कृष्ण जी के। पर थोड़ा सा उसके पीछे एक बैकग्राउंड, कौन है शिव? श्री अरविंद कहते हैं कि सच्चित आनंद, ये हम सब इससे परिचित हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म रूपम। तो भगवान के को अगर हम कहें कि उनका जो मूल स्वरूप क्या है, तो वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद कहाँ से प्रकट हुए? परब्रह्म। उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ना कह सकते हैं कि वो हैं, ना कह सकते नहीं है, क्योंकि हर डेफिनेशन में आपने उनको लिमिट कर दिया। ये भी श्री अरविंद की एक कविता है, पर ब्रह्म, जिसका अनुभव ये उन्होंने लिखी कलकत्ता में है। उसको 1912-13 में श्री अरविंद कहते हैं 18 आवर्स ए डे आई एम एबल टू ड्वेल इन द पर ब्रह्म। पर ब्रह्म क्या है? एक चार लाइन, क्योंकि बड़ी सुंदर पोयम है, तो उसको हम लोग ये श्री अरविंद के चार जो मुख्य प्रमुख रियलाइजेशंस हैं, एक तो है निर्वाण, दूसरा है वासुदेवम सर्वमिति, और तीसरा है परब्रह्म, और चौथा है जो सिद्धि दिवस पे श्री कृष्ण का पूरी तरह फिजिकल बीइंग के साथ एक होना। तो ये थर्ड मेजर रियलाइजेशन है, इसको टच करके वील कम टू शिव, क्योंकि ये ओरिजिन है परब्रह्म। तो बहुत लंबी कविता है, पेज 30-31 ये किताब जो है उसमें से। अब कहा जाता है कि परब्रह्म का वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि नेचुरली आपने वर्णन किया तो लिमिट कर दिया, लेकिन परब्रह्म तो परब्रह्म का वर्णन कर सकता है। कैसे वर्णन कर रहे हैं श्री अरविंद, अंदाज देखिए इस पोयम का, जॉय, शियर जॉय, कैसे, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, आप कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं? नासदिया सूत्र में है, इस तरह से है, वो था कि नहीं था हम नहीं कह सकते। वो नास्तिकता का सूत्र नहीं है, वो ये कहता है कि वो वाणी शब्द समझ के परे है। अब श्री अरविंद का अंदाज, पेज 31, 30 में वो प्रारंभ होती है या 30 में लास्ट पैसेज से. इसको मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू रीड समथिंग ऑन शिवा. ही इज नॉट बाउंड बाई वेकिंग और बाई स्लीप, न सुसुप्ति न जागृत. ही इज नॉट बाउंड बाई एनीथिंग एट ऑल. लॉज आर दैट ही मे कॉन्कर देम. टू क्रीप और सोर इज एट हिज विल. टू राइज और फॉल, इसका बस आनंद लेंगे. इसको इस वाइन को पियेंगे, लेबल नहीं डालेंगे ये कौन सी वाइन है, इस मॉडल है, कितना स्पिरिट मिली हुई है. वन फ्रॉम ऑफ ओल्ड पजेस्ड हिमसेल्फ अबव. स्वयं को वो जानता था, स्वयं भू, स्वयं प्रकाश, द एंशिएंट ऑफ द डेज, पुरुषो पुराणो. हु वॉज नॉट एनी वन नॉर हैड ए फॉर्म. वो ना शिव है, ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना कृष्ण है, कुछ भी नहीं है. Not yet was formless, neither hate nor love could limit his perfection, peace nor storm. आप देखिए, he is, we cannot say, for nothing too is his conception of himself unguessed. आप कहेंगे he is, तो मतलब there is something called as is not. आपने लेबल कर दिया ना, बांध दिया. नथिंग भी स्वयं को वो छुपा लेता है, सबसे गोपनीय. ही इज वी कैनॉट से फॉर नथिंग टू इज हिज कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ एंड गेस्ट. ही डॉन्स अपॉन अस एंड वी वुड परस्यू. बट हु हैज फाउंड हिम और व्हाट आर्म्स पजेस्ट. जिस दिन ये कहा कि मैंने भगवान को पा लिया, उस दिन वो छूट गए. आप ये कह सकते हैं उन्होंने हमें पजेस कर लिया. मन मना भव मद भक्ता, ब्रह्म भूत जिसकी बात हो रही है. मैंने पा लिया ब्रह्म को, मतलब आपने नहीं पाया है अभी. क्योंकि आप नहीं पा सकते. आप एक हो सकते हो, पजेस कर सकता है वो, आप जान सकते हो एक होके तादात्म के साथ, पर वो पा नहीं सकते क्योंकि फिर तो वो सब कुछ वही है भी और नहीं भी. ही इज नॉट एनीथिंग येट ऑल इज ही. हाउ ही इज नॉट एनी थिंग, क्योंकि आप उसको, ये गीता में भी ये बात आती है, अगर मैं ये कहूं कि ये उंगली किसकी है, तो मेरी है. क्या मैं ये उंगली हूं? आप देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे उत्तर देने में. यह उंगली भी मैं हूं. पर अगर आप ये कहेंगे कि यह उंगली मैं हूं, तो समस्या है. ही इज नॉट एनी थिंग येट ऑल इज ही. ये उंगली भी मैं हूं, ये पांव भी मैं हूं, ये आंखें भी मैं हूं, पर आप ये कहेंगे यही मैं हूं, तो समस्या है. ही इज नॉट ऑल बट फार एक्सीड्स दैट स्कोप. मेरी देह की आपने पूरी वर्णन कर दी और कहा ये तुम हो, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं तो और भी कुछ हूं. यहां पर आती ना मनोबुद्ध अहंकार चित्ता निनादम. आगे देखिए, बोथ टाइम एंड टाइमलेसनेस सिंक इन दैट सी. अब यहां टाइम, टाइमलेसनेस, टाइमलेसनेस क्या होती है? जहां काल लगभग स्थिर हो गया है. कहां स्थिर होता है? दो जगहों पे स्थिर होता है. एक तो परम प्रज्ञा, जहां से काल का ओरिजिन है, सेंटर है जो, वहां वो स्थिर है. और अगर एकदम नीचे चले जाए निश्चेतना, वहां काल लैप्स कर जाता है. टाइम और स्पेस दोनों लैप्स कर जाते हैं. तो जहां काल स्थिर हो गया है, टाइमलेसनेस, उसके परे इटर्नल है. टाइम इज ए वेव एंड स्पेस ए वांडरिंग ड्रॉप. क्या कहा जाए उनके बारे में या उसके बारे में, जहां पूरी काल की गति एक मात्र एक वेव है. युग युगांतर लगते हैं कि एक वेव चली गई. और स्पेस क्या है? केवल एक बूंद. कितने टाइम स्पेस है? अनेकों. हम तो केवल जड़ जगत के टाइम स्पेस को जानते हैं. प्राण जगत का, मनोमय जगत का, चेतना की अवस्थाओं के अनुसार हम देखते हैं टाइम स्पेस चेंज होते हैं. डिप्रेशन में देखिए, लगता है वो दिन नहीं गुजर रहा होता है ना. और आपको डिप्रेस्ड आदमी को बोलो जरा भाई उठ करके पानी लिया, बड़ा भारी लगेगा, उसको लगेगा पता नहीं कितने दूर कुछ करने जा रहा है। खुशी में देखिए, हाँ अभी लाया, पौंडीचेरी जाते हैं तो लगता है ना कितनी जल्दी दिन गुजर गए, क्योंकि वो स्पेस और टाइम हमारी आंतरिक अवस्था से भी जुड़े हैं, मेटेरियल स्पेस नहीं परंतु इंटरनल स्पेस। विद इन हिमसेल्फ ही शैडोड बीइंग फोर्थ। अब ये कौन है शैडोड बीइंग फोर्थ? सच्चिदानंद, वो परब्रह्म से ही शैडोज सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ब्रह्म। विच इज ए यंगर बर्थ, ए वेल ही चोज टू हाफ कंसील हिम। नॉलेज नथिंग वर्थ सेव टू हैव ग्लिम्सेज ऑफ इट्स माइटी कॉज। वो कॉज क्या है? एंड हाई डिलाइट ए स्पिरिट इनफाइनाइट दैट इज द फाउंटेन ऑफ दिस ग्लोरियस वर्ल्ड। इस सृष्टि का उद्गम क्या है? आनंद है, सच्चिदानंद। वील कम टू दैट इन ए मोमेंट। डिलाइट दैट लेबर्स इन इट्स ऑपोजिट। कोई बोलेगा ये क्या आनंद की चीज है, ऑपोजिट में जाके पूछिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको मट्टी में लोटने में मजा आता है, आप उसको पूछिए भाई क्या मजा आ रहा है, कहते हैं हमें आ रहा है। डिलाइट दैट लेबर्स इन इट्स ऑपोजिट, मतलब डिलाइट अपनी सारी आनंद है ना, तो आनंद संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है, पूरी तरह स्वयं को गोपनीय करके ढूंढने में भी उसको मजा आ रहा है। होता है ना हम लोग छुपन छुपाई खेलना, इम्पॉसिबल एडवेंचर, बंजी जंपिंग, डिलाइट है आनंद के लिए बिल्कुल अपोजिट में। फेंट्स इन द रोज एंड ऑन द रैक इज कर्ल्ड। रोज में भी छिपा है, प्रकृति की सारी वेव्स में भी वो प्रकट हो रहा है। दिस वॉज द ट्रायून प्लेग्राउंड दैट ही मेड एंड वन देयर स्पोर्ट्स अ वाइल। ही प्लक्स हिज फ्लावर्स एंड बाय हिज बीज हिज टंग ही इज डिसमेड फ्लीज फ्रॉम हिमसेल्फ और हैज हिज सलेन आवर्स। तो ये सच्चिदानंद सत इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, चित इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, चित के साथ तपस जुड़ा हुआ है, क्योंकि चित इज नॉट जस्ट नॉलेज। कोई भी ज्ञान ऑटोमेटिकली उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ रहता है। कर्म ये हो सकता है कि नहीं मैं कर्म नहीं करूंगा, या कर्म हो सकता है कि मैं ये करूंगा। किसके आधार क्या होता है? ज्ञान। जितना सीमित ज्ञान है उतना सीमित कर्म है, दे आर टुगेदर। इवन जहां लग रहा है कि कर्म कर रहा है बिना सोचे समझे, वहां भी एक ज्ञान छुपा हुआ है। तो योग के द्वारा ऑफकोर्स ज्ञान को पूरा रिक्लेम करके कर्म करते हैं। तो चित तपस, तपस इज पावर, नॉलेज एंड पावर सारी सृष्टि में खेल रहे हैं। एटम्स के अंदर भी नॉलेज और पावर है, चींटियों के अंदर भी नॉलेज पावर है, सबके जगह लिमिटेड रूप में। तो चित तपस और आनंद, ये सच्चिदानंद के अंदर ये फोर फोल्ड गॉड है, चार एस्पेक्ट्स हैं। इन्फिनिट एग्जिस्टेंस इज ब्रह्मा, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस इज विष्णु, इन्फिनिट तपस और फोर्स इज शिवा, इन्फिनिट आनंद और ब्लिस इज कृष्णा। यही है चार ओरिजिनल गॉड। देखिए आप इंडियन मिथोलॉजी में जाएंगे तो दे आर द वंस। तो नॉर्मली हम लोग त्रिदेव की बात करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, कृष्ण क्यों? क्योंकि आनंद के कारण ये प्रारंभ होता है, हैं चारों एक साथ ब्रह्मा, लेकिन हम लोग उनको ओवर माइंड और उसके नीचे वाले प्लेन्स पे पौराणिक पूजा हुई है, लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ है? उसी सच्चिदानंद ब्रह्म में। उस सच्चिदानंद का जो सत्ता का जो पार्ट है एग्जिस्टेंस, वो ब्रह्मा। उनका जो चित जो सारी सृष्टि को जिसने ताने बाने से बांधा हुआ है, और इसी में आता है धर्म की जब ग्लानी होती है तो विष्णु भगवान क्यों आते हैं? वो कौन सी धर्म की ग्लानी है? जब सृष्टि का बैलेंस, क्यों? क्योंकि चेतना ने एक सूत्र में सब बांधा हुआ है। जब एक वृत्ति अधिकता में बढ़ जाती है और बहुत सारी चीजें या तो छिपी हैं या प्रकट नहीं हुई हैं, तो उस बैलेंस को ठीक करते हैं। ये विष्णु और इन्फिनिट फोर्स शिव, और इन्फिनिट आनंद कृष्ण, तो यहां से प्रारंभ होता है। और इसको उपनिषदों में चतुष्पाद ब्रह्म के रूप में भी प्रकट किया हुआ है, सावित्री में वो भी आता है। दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं, दोनों हम लोग पौराणिक स्टेप्स को की कहानी ले सकते हैं जहां ये चार एस्पेक्ट्स के ये नाम है, या हम लोग उपनिषदों को ले सकते हैं, विशेषकर मांडुक उपनिषद, चतुष्पाद ब्रह्म, वेकिंग ड्रीम स्लीप और तूर्या, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तूर्या। तो जागृत वो जो मेटेरियल यूनिवर्स है विष्णु, लेकिन उस पुराणों में विराट, विशाल विराट के रूप में प्रकट होते हैं। हिरण्यगर्भ स्वप्न, क्यों? हिरण्यगर्भ के अंदर क्या हो रहा है? सब कुछ जो उसने रिसीव किया है ना प्रज्ञा से, वो सब उसके अंदर बीज जो डाले गए हैं विश्व चेतना के अंदर, वो सारे विश्व को उन्होंने संभाला हुआ है, उसको मैनेज कर रहे हैं, और वही सारे बीज फोर्सेस के क्लैश से अंत में बाहर प्रकट होंगे। तो विष्णु हिरण्यगर्भ की, और वो किस पर सोए हैं? शेष शैया, शेष नाग, अनंत नाग। अनंत नाग कश्मीर में एक जगह है, लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है, बताइए कब से जगह है, उसका नाम थैंकफुली नहीं बदला। अनंत नाग, अनंत नाग यानी इन्फिनिट टाइम। शिव जी का सरपेंट क्या है? सरपेंट ऑफ इवोल्यूशन, बट वील कम टू इट इन ए मोमेंट। तो इट इज द इन्फिनिट टाइम, जो काल की गति में, और उसने क्या धारण किया है अपने ऊपर? पृथ्वी को, फन बदलती है, जब पृथ्वी एक फन से दूसरे फन पर जाते हैं तो ट्रांजिशन होता है, इसको आज हम लोग कहते हैं ना मैग्नेटिक चेंज और ये और वो, और उसके कारण सारी चीजें, वेदर पैटर्न बदलता है क्योंकि वो एक डिफरेंट युग में प्रवेश करती है। इसको मिस्टिक सिंबल के रूप में बताया गया है, वो सिंबल केवल नहीं है, ये एक दर्शन भी है। और कॉस्मिक वाटर्स पर वो सोए हुए हैं, क्यों सोए हुए हैं? उनके गर्भ के अंदर क्या हो रहा है? वो सब ब्रह्मा जी जो रजोगुण संपन्न है, वो नाभि से निकलते हैं और कमल के ऊपर बैठ करके वो प्रारंभ करते हैं सृष्टि। इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कविताओं को केंद्र में रख के करेंगे। और हिरण्य गर्भ के परे प्रज्ञा, सुपर कॉन्शियंट लाइट एंड फोर्स, दैट इज शिवा। शिवा यहां पर ये बन जाते हैं सुषुप्ति। इसीलिए शिव जी को जब देखते हैं वो एकदम गहरे ट्रांस में है, वो नहीं बता रहे हैं कि सृष्टि क्या है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता, देवताओं को भी नहीं पता है। और उसके परे तूर्य परमानंद, कृष्ण जी पीछे खड़े हैं। अब इसको आप ऐसे कनेक्ट करिए, तो इंपेल्ड बाई आनंदा क्या होता है? अब सृष्टि प्रारंभ होगी। कैसे प्रारंभ होगी? परम सुसुप्ति में, जो परम प्रज्ञा सोई हुई है ट्रांस के अंदर। हमेशा शिव जी दिखाते हैं ना एकदम समाधिस्थ है, उनको जगाना है, कौन जगाएगा? उन्हीं की शक्ति, आद्य शक्ति माँ पार्वती, वो चली जाती है उनसे दूर, मेटीरियल नेचर में चली जाती है, और वो धीरे 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 वो शिव जी से आकर्षित होकर के उठती जा रही, उठती जा रही है। प्राणवंत होता है मेटीरियल नेचर, फिर मन मनोमय होता है, फिर एकदम नजदीक पहुंचती हैं, पर शिव तो जाग नहीं रहे, उन्हीं की शक्ति गई है। और फिर वो क्या करती हैं जगन माता? आनंद में एक लीला रचते हैं। क्या लीला रचते हैं? प्रेम का बीज डालते हैं, आनंद के लिए सृष्टि बनी, यही उपनिषदों में यही कहा गया है। आनंदार्थ हमें क्या डिस्क्राइब किया? अमृतस्य पुत्र, आनंद के लिए ये लीला है। और इस पर सावित्री में एक बड़ा सुंदर पैसेज है, दोज हु आर इंटरेस्टेड, ब्लिस इज द सीक्रेट स्टफ ऑफ ऑल दैट लिव्स, दिस इज ए ब्लिस इन जॉय, ए ब्लिस इन सॉरो, ए ब्लिस इन राइज, ए ब्लिस इन फॉल, ए ब्लिस इन विक्ट्री एंड डिफीट। हर चीज को चखता है वो जो बैठा हुआ है, और उससे पोषित होता है। क्यों चखता है वो रहस्य? अगर हम देखें कि अनंत संभावनाओं को प्रकट करने के लिए सारे अनुभव जरूरी हैं, अनंत में अनंत को डिनाई करने की भी पॉसिबिलिटी है, तो क्योंकि तभी तो ब्लिस की टोटैलिटी आती है। जो कहते हैं ना सब चीजें आराम से मिल जाती है, इसको लोक भाषा में अगर हम कहें कि जिस बच्चे को माता पिता सब चीज आराम से दे देते हैं, एयरलाइन दे देते हैं 4 साल की उम्र में, तो क्या होता है फिर, भगोड़ा बन जाता है वो। तो अच्छे माता पिता नहीं देते ऐसे, कहते हैं रुको, मेहनत करो, चैलेंजेस लो। हम चैलेंजेस से घबराते हैं, पर यदि हम ये जान जाएं कि ये आनंद के लिए सृष्टि बनी है, तो हम चैलेंजेस को कैसे देखेंगे, अच्छा भगवान हमको अच्छी वाली भोजन देने के लिए तैयार कर रहे हैं। तब हेल क्या दिखाई देगा, एज द शॉर्टकट टू हेवन्स गेट्स, उसमें भी हमको परम प्रेमी का प्रेम दिखाई देगा। क्यों नहीं देख पाते हैं, अरे बड़ी पीड़ा है, कष्ट है, क्यों बना दिया उसने। अरे ज्यादा आनंद के अधिकारी बनने वाले हो भाई, अब वो या तो वाइन पियो, उतने ही तुम्हारे अधिकार है, या डिवाइन को पियो। इसीलिए तो देखिए सोमरस दोनों पे अप्लाई करता है। जो ब्रिटिश जो बाहर वालों ने पढ़ा, उन्होंने कहा बार्ली है, बार्ली का एक विशेष पौधा है जिसको निचोड़ के सोमरस मिलता था। लेकिन सोमरस सबसे अंत में आते हैं, सोम सबसे पहले देव हैं जो सृष्टि के अंदर जाते हैं, निकालना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद के कारण सब टिके हुए हैं। कितने भी लोग दुखी, जिसको कहते हैं दुखी आत्मा, वो सबको ब्लेम कर रहे हैं, भगवान को ब्लेम कर रहे हैं, ये है वो है, पॉलिटिशियंस को ब्लेम, सबको ब्लेम कर रहे हैं, खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। उनसे बोलो भैया मेरी पहुंच है, टिकट कटवा दें तुम्हारा, मर्सिडीज में आ जाएंगे यमराज। अरे भैया हम ये मतलब थोड़ी था, कुछ अच्छी बातें भी तो हैं कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। देखिए आप कैसे, क्यों? क्योंकि एक जॉय है। इवन जो सुसाइड कर रहा है वो भी क्यों कर रहा है, परहैप्स आई विल गेट ए जॉय, मुक्त होके पीड़ा से मुक्त होऊंगा शायद, एक कहीं आशा की वो देखता है। ये जॉय जो है यही हमारी विल टू लिव का कारण है। कितना भी लोग ब्लेम कर दे, माया है, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं अरे ये तो माया है, फिर ग्रहण करते हैं चंदा आप पूछो भैया आप क्यों माया में बंध रहे, नहीं हम तुमको मुक्त कर रहे हैं तुम्हारे पॉकेट की माया तुम बंधे रहोगे, आप यहां मैं, हम तो तुम्हारा बंधन ले रहे हैं अपने ऊपर। सब जगह माया माया बोल करके, अरे किसकी माया है, श्री कृष्ण कहते हैं मेरी माया है भाई मोह का त्याग करना है, माया का नहीं। मोह है रॉन्ग फॉल्स रिलेशन विद द वर्ल्ड, एंड देर इज ए ट्रू रिलेशन विद द वर्ल्ड। वो क्या, ममे वंश आनंद। जब मोह का त्याग होता है तो ये सृष्टि आनंद में दिखने लगती है। मोह हमको कहता है अरे मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है, अरे मैं मर सकता हूं, अरे मैं ये, मैं कमजोर हूं, मैं अशक्त हूं, ये सब मोह का मोह ही है जो कहता है ये संसार को छोड़ देने अच्छा है, चला जाऊं मैं कहीं, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, ये मोह है। इट्स ए मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म। लेक्चर मोह माया पर नहीं है, शिवजी पर है। तो लेट अस कम टू शिवजी। श्री अरविंद ने दो कविताएं लिखी हैं शिव पर, और इसमें उसका संकेत है, इसीलिए मैं वो कविता आज, हाँ दो कविताएं लिखी उन्होंने शिवजी पर, तीन लिखी हैं एक्चुअली, दो जो शिव के नाम से है, एक केवल शिव वो हम आज पढ़ेंगे, दूसरा है शिवा द इनकॉन्शियंट क्रिएटर। क्यों? वही जो बीज उन्होंने मेटेरियल नेचर के अंदर डाल दिए हैं, अपनी ही ऊर्जा उसके अंदर डाल दी है, इसलिए वो महाशिवरात्रि और दोनों का प्रणय, दैट्स अ सिंबल, टू नाइट्स, एक जो सुपर कॉन्शियंट एक इनकॉन्शियंट, जिसकी बात हुई है। एक्चुअल ओरिजिन वहां है, लेकिन हम लोग यहां पे दिखता है कि वो इनकॉन्शियंट से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका बीज इसमें पड़ा हुआ है। और तीसरी बड़ी सुंदर है एपिफेनी, उसमें शिव के दो रूपों का वर्णन है, एक शिवत्व के रूप में, दूसरा है रुद्र के रूप में, और एक और है द वन सेल्फ, जिसके अंदर वो शिवा एंड कृष्ण आर ए सिंगल गॉड, इसकी बात करते हैं। पर अगेन लोप संवरण कर रहा हूं मैं, तो एक एक पोयम में घुस के पूरी रात बिता दे व्यक्ति, ये तो नशा है। तो आज हम लोग केवल ये इसी बुक में है पेज 39 पर, शिवा पेज 39, ये जो किताब है शिवदेव लाइफ थ्रू हिज पोएम्स। और मैंने ये यहां क्यों डाली है, क्योंकि श्री अरविंद माता जी के जीवन में भी, श्री अरविंद आप फोटो देखिए उस समय की, माने उसको बताया इट इज इन इज एसिटिक फॉर्म, महातपस्वी के रूप में, और उससे वो बाहर आते हैं। 1920 की कहानी फोटो है, उसके पहले वो फोटो ही नहीं देते थे। क्यों बाहर आते हैं? जब माँ आती हैं, और माँ आती हैं, पहले आती हैं तो प्रेरणा दे, उनकी माँ की प्रेरणा पर आर्य प्रारंभ होती है। देखिए वही कहानी है जो शिव पार्वती की लीला है, एक नए रूप में प्रकट हुई है। ऑन द वाइट समिट ऑफ इटर्निटी ए सिंगल सोल ऑफ बेयर इन्फिनिटी। सब देखिए एक एक शब्द, वाइट समिट ऑफ इटर्निटी, एब्सोल्यूट प्योरिटी, जहां कुछ भी नहीं है। प्योरिटी किस तरह की? जहां कुछ भी प्रकट ही नहीं हुआ, सब अप्रकट है। वाइट इटर्निटी ए सिंगल सोल ऑफ बेयर इन्फिनिटी, एकमेव द्वितीयम, वह जिसके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। लेकिन यहां अनंत संभावनाओं की बात नहीं हो रही है, बेयर इन्फिनिटीज, एवरी गॉड हेड इज इन्फिनिट अगर वो ज्वाइन करे अपने सोर्स में। और वो इन्फिनिटीज, आप किसी जस्टिस इन्फिनिटीज, प्रेम इन्फिनिटीज, ब्यूटी इन्फिनिटीज, उसकी अपनी एक असीमता में उसकी वहां छिपी हुई है अप्रकट रूप में, बेयर, प्रकट नहीं हुई है इसलिए बेयर। व्हाई? बिकॉज वो अपने मूल स्वरूप में है। यहां बेयर गार्डेड ही कीप्स बाय ए फायर स्क्रीन ऑफ पीस, शांति है शिव की शांति, लेकिन फायर स्क्रीन, ज्यादा करीब मत चाहिएगा, वो शांति भस्म कर सकती है अगर आपके अंदर गलत भाव है। ऐसी होता है ना, आश्रम में जो लोग जाते हैं बड़ी शांति मिलती है। कोई लोग माता जी से पूछते थे, माँ हम शांति के लिए आना चाहते हैं। माँ कहती थी यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यज्ञवेदी है। कुछ दिन के लिए जाते हैं, दूर से जाते हैं, शांति मिलती है, और शांति है इसमें बड़ी घनीभूत शांति है, लेकिन वो अग्नेय शांति है। ऐसी शांति है जिसके अगर आप बहुत करीब गए तो तपने लगोगे। आश्रम में तप करता नहीं है कोई, तप कराया जाता है, क्योंकि वो तपस्थली है। आप चाहें नहीं चाहें, आपको पकड़ पकड़ के भगवान कराएंगे, वो एक अलग स्टोरी है। फायर स्क्रीन, देखिए अग्नि, अग्नि का ज्वाल, वो जैसे स्क्रीन के रूप में। अब ये नहीं वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन बहुत ताप है। तप का अर्थ ही ये होता है, तप, ताप हम लोग कहते हैं ना, हीट, कंसेंट्रेटेड अवस्था है वहां। अग्नि जिससे सारी सृष्टि जन्म लेगी वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, और उसमें कुछ भी अभी प्रकट नहीं हुआ है। हिज मिस्टिक लोनलीनेस ऑफ न्यूड एक्सटेसी, वहां भी आनंद है। किस चीज का आनंद है? एकांतिक आनंद, एक होने का आनंद। लेकिन उस आनंद में सब कुछ छिपा है, अनंत संभावनाएं छिपी हैं। शिव का वर्णन है, लेकिन कौन सा? वो प्रज्ञा स्वरूप में, सुसुप्ति की अवस्था में जिसकी बात हुई है। बट टस्ट बाय इमेंस डिलाइट टू बी, कौन है पीछे? श्री कृष्ण, छुलबुले नटखट, नटखट नागर, वो जो शक्ति छिपी हुई है उसको प्रहट कर रहे हैं। डिलाइट टू बी, सृष्टि क्यों बनी है? डिजायर के कारण नहीं बनी है, भूल नहीं है भगवान की, माया नहीं है, ये जॉय को अनेकों रूप में। अब कौन सा आनंद? उनको तो आनंद है, न्यूड एक्सटेसी है। अब उपनिषदों में तो इसको एक बार बड़े अजीब ढंग से भी कह दिया, पर उपनिषदों की वाणी है तो उसका हम वो नहीं कहते। एकाकी न रमते, अकेलेपन में क्या मजा है? अगर आप इसको लिटरली ट्रांसलेट करें, अकेलेपन में क्या मजा, एकाकी न रम्यते। पर इसका जो मेन है वो ये, एको हम बहुश्याम, वह एक का आनंद अनंत प्रकार के आनंद में। और देखिए हम सबके अंदर है ये चीज। आश्रम भी जाते हैं तो कंपनी ढूंढते हैं, उसके बाद आपको चाहे अंत में कम से कम समाधि के पास तो आप अकेली सिर ये नहीं चलो एक साथ सिर नहीं लेकिन चलो साथ में कोई भी चीज, अकेलेपन का अपना आनंद है लेकिन उसको एक्सपेंशन का जो आनंद है, ये हम लोग एक स्मॉल उससे हम देख सकते हैं। तो वही आनंद जो एक का आनंद है वो अनेक आनंद में प्रकट होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है, वह एक अनंत है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। सभी संभावनाओं के द्वार से वो आनंद स्वयं को प्रकट करना चाहता है और फिर से अपने को टच करना चाहता है। तो मूव टस्ट बाय एन इमेंस डिलाइट टू बी ही लुक्स अक्रॉस अनएंडिंग डेप्थ्स एंड सीज म्यूजिंग एमिड द इनकॉन्शियंट साइलेंसेस द माइटी मदर्स डम फेलिसिटी। अब देखिए यहां पे ये कहानी का ये वो भाग है जो नहीं हम तो सुनते हैं ना शिवजी तीसरी आंख खुलती है भस्म कर देते हैं, यहां शिव की आंख खुलती है। क्यों खुलती है? क्योंकि आनंद ने उनको अंदर में प्रेरित किया है। और जब आंख खुलती है उनकी तो वो क्या देखते हैं, कहां जाके दृष्टि गिरती है उनकी? डम मदर। डम मदर कौन है? मेटीरियल नेचर। उन्हीं की शक्ति ऐसे बन गई है, ये भी आता है शिव पुराण में और ऋग्वेद में भी है बट उसके विस्तार में दसवें मंडल में। उन्हीं की शक्ति इतनी दूर चली गई, डम्ब अदर बन गई, लेकिन अभी भी उसके अंदर डम्ब फेलिसिटी, वो एक जॉय का एक स्पर्श है। इसीलिए देखिए मेटेरियल नेचर में भी हम लोगों को, मनुष्य को अगर किनारे कर दें तो हर चीज में जॉय एक स्पॉन्टेनियस मिलता है। इवन सांप को दूर से देखेंगे तो टीवी पर ठीक है, मनुष्य के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, मनुष्य भी सुख देता है थोड़ी देर लेकिन उसके बाद कुछ हो जाता है, ईगो का इतना स्ट्रांग उसका, पर वो एक अलग स्टोरी है। तो माइटी मदर, माइटी मदर कौन है? मेटीरियल नेचर। एक क्षण को अगर फ्लड आ जाए तो पूरी पृथ्वी को डुबो दे, माइटी मदर। स्टार्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, माइटी मदर, लेकिन उसके अंदर एक जॉय है जो हेल्ड बैक है। वो शिव देखते हैं कि अरे मेरी शक्ति वहां पर कार्यरत है, और कार्यरत है लेकिन वो अपने पूरे जॉय को अंदर में संवरण किए हुए है, जो जन्म लेना चाहता है। तो वो क्या करते हैं? हाफ नाउ अवेक शी राइजेस टू हिज ग्लांस। ऐसी थोड़ी माता पार्वती आ गई, वो भी शिव ही कर रहे हैं, धीरे धीरे तप करा रहे हैं। ये भी आती है शिव पुराण में, पूरी स्टोरी अगर हम देखें तप भी वही करा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी जो दृष्टि पड़ती है तो वहां से माइटी मदर, उन्हीं की शक्ति जो माता पार्वती बन करके जड़ तत्व में समा गई है, मेटीरियल नेचर, वो जागती है। और जाग करके वो क्या देखती हैं? Then moved to circling by her heart beats will, वो जाना चाहती हैं शिव जी के पास। तो अब क्या करती हैं? कैसे जाएंगी अब उनको, अब सामने कौन खड़े हैं उनके? उन्हीं के प्रियतम जहां से वो आई हैं। तो अब क्या करती हैं? वो डांस कर रही हैं, उनका हृदय आनंदित हो रहा है, उल्लास से भर जाता है और वो नृत्य करती हैं। अब देखिए प्रकृति का नित्य है ना, इसी चीज को कहा जाता है प्रकृति कहां शांत समाधिस्थ होती है, जब वो सेल्फ में समा जाती है, वहीं से निकली है, दोनों अलग नहीं है। और वो शांत तभी होती है, उसके पहले शांति नहीं आ सकती, आप प्रयास कर लो कितना भी। तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम शांतिम शाश्वती नेत्रेषाम, आप कितनी भी कोशिश कर लो। और इसका हम लोग उदाहरण देखते ना, बड़े अशांत मन ये वो इधर उधर, आप गए समाधि पर कुछ क्षणों के लिए, ऐसा लगा उफ सब डिसॉल्व हो गया। तो प्रकृति क्या कर रही है? नाच रही है। क्यों नाच रही है? वहां पहुंचना चाहती है, सर्कलिंग। अब इसी बात को देखिए अलग अलग जगह, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इंडिविजुअल मोशन, कॉस्मिक मोशन, एटम्स नाच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, अनेकों अनेकों ताल छंद लय में कौन नाच रही है, प्रकृति नाच रही है, और नाचते नाचते वो बहुत कुछ गिफ्ट बना के लेके जा रही हैं परम पुरुष के पास. देन मूव टू सर्कलिंग बाय हर हार्ट बीट्स विल द रिदमिक वर्ल्ड्स डिस्क्राइब दैट पैशन डांस. अनेकों अनेकों उनके नृत्य से जगत प्रकट हो रहे हैं, वर्ल्ड्स जैसे जैसे वो नाच रही हैं. लास्य, इसी को कहा गया है लास्य, उस नृत्य से अनेकों जगत प्रकट हो रहे हैं मां पार्वती के या मेटेरियल नेचर के नृत्य से. लाइफ स्प्रिंग्स इन हर एंड माइंड इज बॉर्न. अब यहां समरली श्री अरविंद बता रहे हैं, प्राण के जगत प्रकट हो रहे हैं, मनो में जगत प्रकट हो रहे हैं. लाइफ स्प्रिंग्स इन हर एंड माइंड इज बॉर्न. हर फेस, अंत में जब माइंड की जगत के बाद हर फेस शी लिफ्ट्स टू हिम हु इज हर सेल्फ. तब वो देखती है कि ये, अरे मैं ही तो हूं. हु इज हर सेल्फ, वही तो, वहीं से तो मैं आई हूं. वह जिनको मैं देख रही हूं उन्हीं से तो मैं निकली हूं, अपने सोर्स ओरिजिन को देख रही हूं. अब देखिए कैसे कैसे डांस करते करते वहां पहुंच रही हैं. हु इज हर सेल्फ अंटिल द स्पिरिट लीप्स इन टू द स्पिरिट्स एम्ब्रेस. लेकिन ये क्यों किया जब अंत में स्पिरिट टू स्पिरिट एम्ब्रेस होनी थी. डिलाइट ऑफ मल्टीप्लिसिटी. माता पिता से पूछें कि भाई बच्चे को क्यों जन्म दे रहे हो, क्या बोलेंगे, ये कारण जॉय मिलता है. कोई माँ बाप बोलेगा नहीं मैं इंजीनियर नहीं बना था, मैंने हवाई जहाज नहीं उड़ाया, मैं चाहता हूं मेरे परिवार में कोई जहाज उड़ाए, ये सब बाद में आता है. संतान केवल जॉय का एक ह्यूमन लेवल पे इसके. आप जब जॉय के लिए तो कोई बोलो तो आप खेलते रहो बच्चे के साथ, अरे ये क्या बात कर रहे हैं. उनको बड़ा मजा आता है जब बच्चा बाहर जाता है, देश विदेश जाता है, स्ट्रांग बनता है एक्सपीरियंस लेकर के. कठिनाई आती है. कोई माँ बाप से पूछ लीजिए, उसको अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा हमेशा घर में रहे. 15-16-18 साल तक शायद लग सकता है. उसके बाद अगर कोई बोले आपका बच्चा क्या करता है, आप बच्चा घर में, आपको परेशानी होगी, अच्छा नहीं लगेगा, आप बताओगे. बट बिकॉज दैट इज द डिलाइट, जिसके लिए वो अलग हो जाता है, दूर जाता है. उसके बाद जब वो रिकवर करता है उसका जो डिलाइट है, इसमें अलग मजा है लेकिन एक सीमित मजा है. और जब वो पूरे बरस विदेश में रहा और तब आप मिलते हैं, उसका अलग मजा है. अब देखिए ये डिलाइट टू बी कितना एक्सटेंड करती है, किस किस तरह से. और अंत में जब मिलन होता है, द स्पिरिट लीप्स इन टू द स्पिरिट्स एम्ब्रेस. तो ये सारी जो सृष्टि है वास्तव में ही और शी, ईश्वर और शक्ति, कृष्ण राधा, शिव और पार्वती, ये अलग अलग पुराणों में इसको अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया है. और वो किस लिए बनी है, डिलाइट को मल्टीप्लाई करने के लिए, और वह सब प्रकट करने के लिए जो अंदर में छिपा है. जब डिवाइन मदर डांस करती है ऊपर के, तो शिव के ही अंदर वह सब जो छिपा है उसको वो प्रकट करती जाती है. हर चीज में शिव को ढूंढ रही है. मेटेरियल यूनिवर्स क्रिएट हो गया, कहां है शिव, कहां है शिव, कहां है शिव. प्राण के जगत, अनेकों अनेकों जगत प्रकट हो गए, उसमें भी शिवत्व के लक्षण है इधर उधर. और इसीलिए बिकॉज ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसी को शिव के गले में जो सर्पेंट है, सर्पेंट इज द पावर ऑफ इवोल्यूशन. और वो क्यों है, क्योंकि दो तरह से आप देखिए, एक बड़ा स्विफ्ट जाता है, और सर्पेंट एक ट्रांजिशन है कोल्ड ब्लडेड से वार्म ब्लडेड क्रीचर्स का, जमीन पर रेंगने वाले से उड़ने वाले जीव का. इवन मेटेरियल नेचर में ये चीज आती है, सर्पेंट इज ऑलवेज, शिवा सर्पेंट माने का इज द पावर ऑफ इवोल्यूशन. तो वो सर्पेंट जो है वो इवॉल्व, पूरा इवोल्यूशन जो हो रहा है उन्हीं की शक्ति से, पावर ऑफ इवोल्यूशन, वो शिव का ही है. और जब दोनों का मिलन होता है, मेटीरियल नेचर और शिव का, या हम ये कहें ईश्वर और उनकी शक्ति का, लेकिन वह शक्ति जो डम मेटीरियल नेचर बन गई थी, वह जो यूनियन होती है, परफेक्ट यूनियन, वही यूनियन वास्तव में उसका जो अल्टीमेट आनंद है, उसके लिए सृष्टि बनी है. और अब इसको श्री अरविंद के योग से जोड़ लीजिए, आप देखिए कि हर अवतार के साथ जो उनकी शक्ति है दूर चली जाती है। राधा और कृष्ण कभी मिलते नहीं हैं, बुद्ध और सुजाता के बारे में कोई बात नहीं करता है, क्राइस्ट ने तो मेरी मैग्डलिन को निष्कासित कर दिया है, कुछ लोग मानते हैं, मदर मेरी की भी कल्ट है, राम और सीता मिलते हैं फिर विलग हो जाते हैं। सीता कौन है? सीता रामायण में तो बहुत स्पष्ट है वो स्टोरी, भूमि जा है, मेटेरियल नेचर, लेकिन कौन है? आद्य शक्ति है, दोनों है एक साथ। असुर ले जाता है, हरण कर लेता है, पर वरण नहीं कर पाता, बिकॉज शी इज टू बिग फॉर हिम, टू पावरफुल। प्रयास करता है, वो भी जानता है कि यदि ये शक्ति हमारे पास आ गई, अल्टीमेट पावर, देन नथिंग कैन डिफीट मी। मिलन होता है, लेकिन फिर उनको भूमि पर जाना पड़ता है, बिकॉज मैनकाइंड तैयार नहीं है, मनुष्य तैयार नहीं है उस मिलन के लिए। और कैसे तैयार नहीं है? धोबी का डाउट हमारे मन में भी है। क्या डाउट है हमारे? धोबी देखिए, धोबी क्या करता है? साफ करता है वस्त्रों को, लेकिन वो क्या कहता है? मां सीता साफ नहीं है। कहानी देखिए, हम भी क्या कहते हैं? जड़ तत्व में भगवान प्रकट होना, नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लोग, अरे हमारे भैया हिरण्यकश्यप भी के समय भी भगवान एक बार जड़ तत्व से निकलते हैं तोड़ करके, हमारी दशावतार की कहानी है ये, किंतु आप भारतीय उसमें भी आप सुनेंगे ये चीज, भगवान जड़ तत्व में ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। मन प्रकट हो गया, अभी प्राण प्रकट हो गया, लेकिन भगवान नहीं प्रकट हो सकते, कैसे काया दिव्य हो सकती? ये सारे जो डाउट्स हैं, धोबी हमारे अंदर है, जिसके चलते अलग होना पड़ता है। लेकिन इस बार जब मां श्री अरविंद का मिलन होता है 24 अप्रैल 1920 को, तो मां क्या कहती है? मां यही कहती है कि इट इज द टेंजिबल साइन of the decisive victory over adverse forces, जो अलग करके रखती है। और इसीलिए शिव का एक नाम दिया है माने, इज द लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस सेंस में, क्योंकि जब जड़ प्रकृति के साथ वो जो शक्ति, जो सुप्रीम पावर है, वही उन्हीं के अंदर की शक्ति उनसे अलग होके ये जड़ तत्व तो बनती है, और वह सुप्रीम पावर से फिर से जब मेटीरियल नेचर का यूनियन होगा, वही रूपांतरण है। और ये इस बार फलित होगा, यही माँ बताती हैं, श्योर साइन, टेंजिबल साइन ऑफ द डेसिसिव विक्ट्री ओवर द एडवर्स फोर्सेस। और जितना हम उस दिशा में जाएंगे, उतना अधिक शिव पार्वती का विवाह संपन्न होगा। पर वैसे तो शिव विवाह मना लेना, मान्यता, थोड़ा नाच गाना कर लेना, वो एक अलग चीज है, लेक्चर दे लेना वो एक अलग बात है, परंतु इसीलिए कहा गया है कि वो ओरिजिनल मॉडल है, वो सूक्ष्म जगत की एक घटना के रूप में एक बहुत बड़ा संकेत है उसमें, वह जो सूक्ष्म जगत में संकेत है उसको इस पार्थिव जगत में, शिव और पार्वती इस मेटीरियल वर्ल्ड के नहीं है, वो एक अलग लेवल की है, लेकिन इस कहानी में उन सार रूप में रूपांतरण की पूरी बात कही गई है, डेसिसिव विक्ट्री की बात कही है, और दोनों के मिलन से जो चीज घटित होने वाली है वह आप हमारे हम सब के जीवन में उस ओर हम सब आग्रह हैं, आगत युग की ओर। इट इज द विक्ट्री ऑफ द डिवाइन कंप्लीटली पजेसिंग हिज ओन मेटीरियल नेचर। तो जो लोग कहते हैं प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, वो दैट इज नॉट द ओरिजिनल ट्रूथ। आपने द्वैत लिया है, एक तो एक उन्हीं के ओरिजिन को समझना मुश्किल था भगवान के, अब प्रकृति को भी समझो उसका ओरिजिन कहां से है। So they are one. There are two who are one and play in many worlds. In knowledge and ignorance, they have spoken and met. They are privy to our thoughts. सब कुछ जो हमारे अंदर है दोनों के मिलन से ही होता है, लेकिन जब पूरी तरह अधिकार हो जाएगा इस जड़ तत्व का, अभी शिवत्व है वो मेटेरियल नेचर के अधीन है, वो लेटे हुए हैं और काली का नित्य हो रहा है, लेकिन जब पूरी तरह से ये जड़ प्रकृति शिवत्व के अधीन हो जाएगी, पूरी तरह उस शक्ति के अधीन हो जाएगी, तब धरती के ऊपर एक जन्म लेगी नई संभावना, जिसके लिए सारी सृष्टि प्रतीक्षारत है। तो हम लोग यहां रुक सकते हैं, कोई प्रश्न है तो आई कैन टेक, देयर इज 5-10 मिनट्स तो है हमारे पास। हाँ तो ऐसा है कि कर्म का भाग्य के बारे में बात है. भाग्य हम लोग सोचते हैं ऐसा किया तो वैसा होगा, है ना. नॉर्मली लॉ क्या है, आप तुमने ऐसा किया है तो वैसा ही होगा. तुम्हारे कर्मों के अनुसार से तुम भाग्य का निर्माण कर रहे हो. तो कर्म क्या है, तुम्हारे अंदर से एक ऊर्जा निकली विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में, कृत्य के रूप में, वो कर्म है. और वो अपनी एनर्जी एक कोर्स पे जाएगी और उसका जो भी उसके अनुसार सृष्टि के अंदर से एक रिएक्शन होगा जिसको हम कर्म फल कहते हैं. दिस इज ईजी. तो अब उसको एक जब आ रही है तो कहा गया जैसा कर्म है वैसा ही उसका प्रतिफल मिलेगा. तो इसमें समस्या क्या है, ये आपको सृष्टि से कट ऑफ करके दिखा रहा है. आपका कर्म है, दूसरे का कर्म है, वो अलग फल ला रहा है, तीसरे का कर्म है, वो उसके अनुसार. ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि सृष्टि एक सूत्र में बंधी है. माता जी इसको ऐसे कहती हैं, तुम्हारा एक कर्म निकला. और इसीलिए हम लोग विसंगतियां देखते हैं. सबसे बड़ी विसंगति क्या होती है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपने बड़ी मेहनत की है उसका परिणाम अच्छा हो. लोग हैं 6-6 बार प्रयास करते हैं फेल हो जाते हैं. अगर केवल कर्म का प्लस एटीएम कार्ड की तरह है तो इतना तो निश्चित है कि एटीएम कार्ड की तरह नहीं ऑपरेट करती है लॉ ऑफ कर्मा. तो हम क्या कहते हैं, आपके पुराने जन्म में पाप पुण्य ये सारी समस्या वो ले आते हैं जिसके बारे में यू कांट क्वेश्चन. पाप पुण्य कहां से आ गया ये एक अलग ही बात आ गई. क्या पाप है क्या पुण्य है उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. बड़ी रिलेटिविटी का वर्ल्ड है. हाँ वही सब आ रहे हैं वहां पर. तो प्रारब्ध क्या है, वही है ऊर्जा जो आपने रिलीज की है. लेकिन पाप पुण्य का जो लेबल हम दे देते हैं, लेबलिंग क्या होती है. अब एक आपसे एक प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि फला फला के बेटे ने अपने बाप को 2 थप्पड़ लगाए, अब बोलो ये सही है या गलत है. एक मतलब मानवीय भावनाओं के रूप में व्हाट विल यू से, गलत है ना. नॉर्मली यही कहेंगे ना. हाँ अब अगर हम कहें कि वो बच्चा वास्तव में 2 साल का था अब क्या कहोगे, बाप धुत होके नशे में आया था. तो ये पाप और पुण्य का जो एस्पेक्ट है, जो इग्नोरेंस में कोई चीज की जा रही है, हम सब इग्नोरेंस में ही करते हैं, ये वृत्तियां होती हैं. इग्नोरेंस में कोई चीज, उसका दंड का विधान कहां से आ गया. उसका दंड होना चाहिए ज्ञान का उदय, उसका शमन अगर करना है, जिसको आजकल एक ह्यूमन बीइंग्स भी समझ रहे हैं कि प्रिजन को रिफॉर्मेटरी बनाना चाहिए, ये भाव आ गया है. क्योंकि वृत्ति तो वही रही ना, वो वृत्ति क्यों है, ज्ञान की वजह से. अज्ञान क्या है, मोह की वजह से. मोह क्या है, ईगो सेल्फ. ईगो का एक्सट्रीम रूप क्या है, इग्नोरेंस से आ रहा है. वो क्या इग्नोरेंस है, ये जीवन केवल मेरे नीच के. अब वहां भी डिलाइट का प्रकृत रूप है, मैं लूटू खसूटू, ये संसार का सब कुछ मेरे लिए बना है, ये अज्ञान है, डिजायर. अब वो अज्ञान किसने दिया था, कोई व्यक्ति ने तो बोला नहीं था मुझे अज्ञान दे के भेजो. तो वो इवोल्यूशन की प्रोसेस से हम इसको समझ सकते हैं, पर वो एक लॉन्ग चैप्टर है. अभी केवल हम भाग्य के उसमें. तो हमारे अंदर जितने भी कृत्य होते हैं वो संसार के एक सम पूल में जाते हैं. कई सारे कृत्य आ रहे, जैसे हम कहते हैं भगवान से पर्ची लगाना. लेट अस टेक द कॉमन एग्जांपल, हनुमान जी का हमने मत्था टेक दिया सबने, बालाजी को ट्यूजडे को जा करके सबने प्रे कर दिया. मान लो हम सब एग्जाम, सब बच्चे जा रहे हैं एग्जाम में, सेम एग्जाम है, 100 में से 2 का सिलेक्शन होना है, सबने जाके कह दिया, अब हनुमान जी क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो गई. तो अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी विल्स हैं जो क्लैश कर रही हैं. इतना कॉम्प्लेक्स है ये वर्ल्ड अरेंजमेंट, इतना सिंपल नहीं है कि मेरे कर्म और मेरा फल. तो पहले तो हमको ये समझना है कि ये कर्म का जो सिद्धांत है, ये कर्म है, ये रियलिटी है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवे बना हुआ है इसका. इतना सिंपल नहीं है कि मैंने 100 रुपए लिए थे पिछले जन्म में किसी से, तो इस जन्म में ठीक है 100 रुपए चले गए, पता नहीं सूद के साथ गए कैसे गए, वही व्यक्ति दूसरे भेष में आ गया, वो पता नहीं क्या करेगा 100 रुपए का. तो इट्स नॉट ए मैकेनिकल लॉ, पहली चीज ये समझनी है. मैकेनिकल लॉ रिजिड होती है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, रिजिड. लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन की ओर उठते हैं हम देखते हैं कि मैकेनिकल कोई भी लॉ रिजिड नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कहते हैं कि भाई सिगरेट पीने से आप बीमार होते हो, सही बात है. आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो सिगरेट पीते हैं और बीमार नहीं होते हैं, ऐसे भी देखे होंगे जो नहीं पीते हैं और बेचारों को हार्ट अटैक हो जाता है, हो जाता है ना। तो जैसे जैसे अब ऐसे लोग हैं जो केवल मन की शक्ति से फिजिकल बॉडी के जो नियम है उसको ओवरपावर करते हैं। एक एग्जाम्पल थे बाबा आमटे, लेप्रसी की उन्होंने इंजेक्शन लिया अपने अंदर कि भाई मुझे ही बना लो स्टडी करने के लिए, क्योंकि लेप्रसी बड़ी मुश्किल से होती है, उसका कोई रिसर्च के लिए वो चूहे के चूहिया के फुट पैड में आप कर सकते हो और मनुष्य में उसका लंबा इंक्यूबेशन है 10-10 साल, तो आप स्टडी कैसे करोगे इसको कि कोई दवाई काम करेगी कि नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे शरीर पे टेस्ट कर लो। उन्होंने बाद में आनंद वन बनाया, बड़ा सुंदर काम किया। शेरविंद को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी जब ये काम करना चाहते थे। खैर, तो उन्होंने लिया लेकिन उनको हुई नहीं, क्यों? मनोबल इतना स्ट्रांग है उनका, सच ए मैन ऑफ ट्रेमेंडस इनर, कहते हैं ना ऊर्जावान, हुई नहीं। कायदे से होनी चाहिए। कोरोना में भी हमने देखा वैक्सीन वाले बीमार हो गए, मर भी गए, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नहीं ली, बच गए। तो अब क्या हुआ, 1-to-1 लॉ नहीं है, क्या हुआ, एक स्ट्रांग मनोबल ने केवल ह्यूमन लेवल पर अगर हम देखें उस चीज का जो कोर्स था बदल दिया। और ये किस लिए जरूरी है, जो लॉ ऑफ कर्म जैसे समझी जाती है उसमें स्कोप ही नहीं है किसी चीज को करने का। तो उसका लॉजिकल परिणाम ये होना चाहिए कि अगर मैं बीमार हूं तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर मेरे कर्म में लिखा है कि कुछ होना है तो होगा, पर हम जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंट्यूटिव सेंस है कि नहीं, वी हैव अ रोल टू प्ले। वरना हमको कहना चाहिए जो मानते हैं कि नहीं भाई आपके भाग्य का लिखा होगा, दे शुड नॉट गो टू ए डॉक्टर। मरना लिखा है तो मरोगे, नहीं लिखा है तो नहीं मरोगे, कितना भी कोरोना हो जाए। क्योंकि मनुष्य के अंदर कुछ है जो इंट्यूटिवली जानता है कि आई हैव ए रोल टू प्ले हाउएवर स्मॉल। वो एक अलग डिस्कशन है, फ्री विल पर बहुत बड़ी एक टॉक भी है मेरी अवेलेबल है। किंतु ये है कि जैसे जैसे हम चेतना में वृद्धि होती है वैसे वैसे हम नियम को ओवर पावर करने लगते हैं और वह जो कर्म का प्रभाव है वो चेंज होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रारब्ध कर्म को मॉडिफाई किया जा सकता है, उत्कट कर्म को कहा जाता है कि नहीं मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रारब्ध कौन है? संचित कर्मों के द्वारा जो आपका आ रहा है। तो उसमें कुछ चीजें थी जो आपको भोगनी थी लेकिन मॉडिफाई हो जाती हैं। क्यों मॉडिफाई हो जाती है? उसको कहते हैं मिटिगेट करना। और इसीलिए नाना प्रकार के उपाय बताए गए। अगर कर्म की लॉ एकदम फिक्स्ड है तो कोई उपाय राहु केतु कुछ भी क्यों हम करें, फिक्स नहीं है। अब क्या करते हैं राहु केतु इत्यादि करके, आप उन शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं जिन्होंने कर्म का ताना बाना बुना है। तो कोई शनि देवता को प्रसन्न कर रहा है, कोई हनुमान जी, कोई तो हो जो आ करके। अब वहां पे क्या हो रहा है, कर्म आपने किया, प्रारब्ध ये होना था, लेकिन ये अब शक्तियां आपस में डिस्कशन कर रही हैं। देखो जो भी है इसके अंदर कहीं ना कहीं पश्चाताप भी आ रहा है। अब इसने अपने हिस्से की पूजा पाठ कर ली, आई एम गिविंग ए क्रूड एग्जाम्पल। अब ठीक है इसको, लेकिन अब होना तो है, छोटा सा कर देते हैं। जहां उसको काटा पीटी होनी थी एक सुई की खरोच पड़ गई, ये हो गया इसको। ये तो मान्यता है हमारे यहाँ। उत्कट कर्म, उसका क्या? उत्कट कर्म वो होते हैं जो सुसाइड ऑफ मर्डर कहा जाता है, कि उसमें भी मोटिव इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब ऐसे तो फिर जो योद्धा है, सोल्जर है, उसका क्या? इसमें भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इवन उत्कट कर्म कैन डिसॉल्व। उत्कट कर्म किसको कहते हैं? मरण और मारण। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप कहा गया है, ब्रह्म हत्या या जीव की हत्या, यानी जो लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्ता मद्याजी मानमस्करु सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सुचा। माँ कहती है, माई चाइल्ड द ग्रेस कैन कंप्लीटली एनल कर्मा। अब देर आर लेवल्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। मेटीरियल लेवल की एक डिटर्मिनिज्म है, मैंने दही खाया, खट्टा खाया, मेरा गला खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है, लेकिन विश्वास है वायरस आया बीमार पड़ूंगा, ये मेटीरियल लेवल की डिटर्मिनिज्म है। प्राण की लेवल पर अगर कोई ऊर्जावान है कहे देखी जाएगी, तो डिटर्मिनिज्म चेंज हो जाएगी। जिसका मनोबल बहुत स्ट्रांग है वो कोरोना के बीच से निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। जिसके अंदर आत्मबल है वो अनटच्ड होगा भय से भी, और जिसके ऊपर भगवान की करुणा है उसके अंदर कोई चीज अगर जो होनी भी थी तो माइल्ड होकर के चली जाएगी, और जिसके ऊपर माँ भगवती की कृपा है वो कंप्लीटली आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कर्म थे चले गए, आप बस सुरक्षित होकर के चले जा रहे हैं। दैट्स व्हाट इट मींस। द कर्मा लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट रिजिड मैकेनिकल एंड इनइलेक्टेबल, और ये हमारे ही शास्त्रों में है। एक और चीज हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर, पुरुषार्थ, ये कहा गया है कि आज के जो आपके रिजल्ट्स हैं कर्म के आपके पास्ट एक्शन से हैं, किंतु पुरुषार्थ द्वारा हम उनको बदल सकते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं, इसीलिए पुरुषार्थ है। हाँ अब
ये तो कोई कर्म आने के बाद का हुआ, जैसे आप बोला मनोबल,
हाँ
वो तो रिजेक्शन और रिस्पॉन्ड की बात,
हाँ
जैसे किसी के भी कष्ट आए,
हाँ
तो वो डिफरेंट माइंडसेट है,
ही कैन चेंज।
छोटा सा लेके बैठा है,
हाँ
कोई बड़े को भी कुछ भी नहीं मानता,
हाँ मानने नहीं, बड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब ये कि द लॉ ऑफ कर्मा इट कैन चेंज द इफेक्ट दैट वॉज गोइंग टू कम, ये ना कर्म फल वो बदल सकता है, ये बात है इसमें मूल चीज ये। वो नहीं मानना तो एक अलग बात हो गई कि मुझे हो गया और मैंने उसको छोटा समझ लिया, आपको वो चीज जो बड़ी होने वाली थी वो छोटी होकर के निकल जाएगी, होगी ही नहीं, ये मतलब है मॉडिफाई का। तो उसे मैंने एग्जांपल दिया था कि वो कितनी सारी कॉस्मिक फोर्सेस कार्य कर रही हैं और कौन सी चीज इंटरवीन करके, और सबसे बड़ी फोर्स तो हमारे अंदर है। श्रीविंद कहते हैं सोल फ्रीडम वॉक्स विद एवरी स्टेप ऑफ फेट एंड सोल कैन चेंज द फिक्स कोर्स ऑफ फेट। अब हमारे यहाँ कहानियां है ना, मार्कंडे की कहानी क्या है, मार्कंडे ही थे ना, उनको तो स्वयं शिव जी ने कहा था ये 12 साल जिएगा, भविष्यवाणी हो गई है, मार्कंडी कहानी तो स्मरण है ना, तो 12 साल जीने वाला है और क्या हो रहा है, वो मृत्यु आ गई, यम के वो कहा भाई मेरे पास लिस्ट में लिखा हुआ है तुम्हारा नाम, तो क्या करते मार्कंडे। मार्कंडे पर बाय द वे एक पोयम भी है शिवरिंद, बड़ी सुंदर, आई मार्कंडे फ्रॉम द वर्ल्ड्स रिलीज, मार्कंडे शिव की शरण में चले जहां से। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो तुम्हें ये संसार में लोग कहते ना भगवान पीड़ा दे रहा है, ओके शमन कहां है, भगवान के पास ही है। शिव ने जो कहा कि भाई ये 12 साल, शिव ही उसको कैंसिल कर रहे हैं, और यम कहते हैं कि भाई ये तो विधान आपका बनाया हुआ है, कहते हैं हां और मैं ही कैंसिल कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया। तो इवन जो लोग कहते हैं भगवान ने संसार में पीड़ा बनाई, तो ब्यूटी है कि ये पीड़ा भी आपको अंत में वहीं ले जा रही है, क्योंकि आप रियलाइज करोगे कि शमन भी इसका भगवान के पास है। तो इट इज हेसनिंग द इवोल्यूशन, क्योंकि वासुकी फुफकार रहा है ना, इसलिए आप शिव के पास भागे चले जा रहे हो, नहीं फुफकारता तो मजे ले रहे होते वैसे बैठे, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं मिलता। तो इट इज नॉट ए लॉ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, द लॉ ऑफ कर्मा इज टू हेसन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन इनस, ये इसका गूढ़ सत्य है जो श्री अरविंद प्रकट करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मच डीपर, और वो पूरी पिक्चर को कंप्लीट कर देता है, नहीं तो आधी अधूरी रह जाती है। हाँ कई उदाहरण है पुरुषार्थ के। एक उदाहरण हमारे यहाँ बड़ी सुंदर, एक दो चार कहानियां में एक कहानी आपको बता देता हूं। ये राम जी के पूर्वज हैं राजा निमिष, तो उनको वो जाते हैं इंद्र वहाँ पे, और उनको कुछ करते हैं ऐसा इंद्रलोक में जाके। एक इसकी अच्छी वाली स्टोरी वो ये है कि जब वो जाते हैं राजा, ये निमिष की नहीं ये दूसरी कहानी है, तो वहाँ पे उनको दो मुहूर्त का स्वर्ग मिला है, और अभी मैं इन चीज़ों के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो एक लंबा विषय हो जाएगा। और उनको कहा गया दो क्षण के बाद आपको बहुत सारे नरक भोगने हैं, कहते ठीक है। अब वो जाते हैं वहां शुरू कर देते हैं दान करना स्वर्ग की सारी चीजें, सब देवता कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, कहते क्यों नहीं कर सकता हूं, अभी तो मैं राजा हूं यहां का। अब ये उनके पुण्य इतने जमा हो जाते हैं स्वर्ग के अंदर कि उनको भगवान विष्णु को बुलाना पड़ता है, तो भगवान विष्णु आके कहते तुम ये क्यों कर रहे हैं, तुम ये ना करो। तो कहते हैं ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं दोनों। तो कहते हैं अब मेरा काम समाप्त हो गया, क्या अब मैं नहीं कुछ किसी को दूंगा। तो जो सारे वो गार्जियंस हैं हेवन के, वो कहते हैं ठीक है अब नरक में जाओ। बोला ये तो अब असंभव है, क्यों? कहते हैं विष्णु भगवान इसका उत्तर देंगे। तो विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं। तो कहता है वो व्यक्ति जो राजा बना है स्वर्ग का, कहता है भगवान का दर्शन पाने के बाद कोई नरक जा सकता है क्या? ये देखिए राजा निमिष की दूसरी कहानी है। वो वहां इंद्रलोक में भी जाके प्रॉब्लम करते, अच्छे कर्मों के कारण वो वहां पहुंचे, दशरथ के पूर्वज हैं, तो उनको धक्का मिलता है कि नहीं अभी तुम उनको नहीं। ये स्टोरी बड़ी थोड़ी, एक सेकेंड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनको हाँ उनको पनिशमेंट मिलना है, तो वो कहते हैं कि कोई तरीका है क्या इस पनिशमेंट को शमन करने का? तो कहते हैं देखो अगर धरती पर कोई भी व्यक्ति है जिसका तुमने शुभ किया हो और वो याद रखता हो तुमको अभी भी, तो तुमको जब तक वो याद रखेगा, जब तक धरती पर तुम्हारे गुड डीड्स को कोई याद रखेगा, तब तक तुम नरक नहीं जाओगे। तो जाते हैं ढूंढते हैं, तो उनको मिल जाता है एक व्यक्ति। तो कहते ठीक है अब तुम नरक नहीं जाओगे क्योंकि तुमने जो गुड किया अभी है, लेकिन उसकी तो कुछ अवधि होगी, तब तक तुम ऐसे ही वांडर करोगे। तो वो कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो देखना चाहता हूं मेरे वंशज बाद में राम जी आएंगे, तो मैं रहूंगा कहां, रेस्ट कहां करूं? कोई तो स्थान दो ना धरती पर, मैं ऐसे डिसएम्बॉडीड घूम रहा हूं, कोई जगह होनी चाहिए। तो कहते ठीक है तुम किसी की पलकों पे निवास कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग सुनते हैं ना निमिष मात्र। तो वो कहानी अंत कहां होती है? जब राम जी सीता जी को अपलक निहार रहे हैं, क्योंकि उनको ये कहा गया है तुम्हारी अब स्विच, क्योंकि लोग याद रखेंगे तब तुम नहीं आ सकते। तो जब वो राम जी, बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है, सीता जी को अपलक निहार रहे हैं, तब ये तो उनके पूर्वज हैं, पलकों पे बैठे हैं, ये कहते हैं मैं कैसे ऐसे देख सकता हूं? तो राजा निमिष चले जाते हैं, क्योंकि वो रहना चाहते थे फॉर एवर एंड फॉर एवर। और उनको ये कह दिया जाता है कि जब तक धरती के ऊपर कोई भी तुम्हारा तुम्हारा कुछ गुडनेस याद रखता है, तब तक तुम रहोगे धरती पर। अब एक समय आता है जब उनको जाना है वापस, तो ये बानक बन जाता है कि राम जी की पलकों पर बैठे हैं, और जब वो माता सीता को देखते हैं, कहते हैं मैं तो इनका दादा पर दादा हूं, ये देख रहे हैं माता सीता, मैं कैसे देखूं? तो ही गोज अवे। तो इसीलिए हम लोग निर्निमेश पढ़ा होगा ना ये शब्द हिंदी में, पलक बिना झपकाए देखते रहना, ये राजा निमिष की कहानी से ये आता है। ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें फिक्स डेस्टिनी चेंज होती है, और इसी कारण बहुत सी स्टोरी में, अब जैसे कर्ण है, ही कुड हैव चेंज हिज डेस्टिनी, दुर्योधन ही कुड हैव चेंज हिज डेस्टिनी, इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण जाते हैं। अगर डेस्टिनी फिक्स्ड है तो फिर तो ये सारी लीलाक्रम का कोई अर्थ ही नहीं था, इट कैन चेंज। तो बहुत सारी ऐसी, अब ये भी एक पुरुषार्थ है, भगवान की शरण में जाना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एफर्ट। तो ये सब कहानियों में संकेत है, माताजी शेरविंद ने इसके ऊपर अपना स्टैंप लगा दिया है, बस ये है, कहानियों में इसका संकेत है। वो कहते हैं कि देयर इज नो, भगवान मैकेनिकल थोड़ी है कि मैकेनिकल लॉ वो बना देंगे, मैकेनिकल लॉ तो भारतीय संविधान में भी नहीं होती, आप प्लीड कर सकते हो, है ना? तो भगवान कम से कम मनुष्य से तो बेटर है कि मैकेनिकल नहीं भाई क्या करूं। ये तो मार्कंडे की, मांडव्य ऋषि की कहानी में भी है, मांडव्य ऋषि के ऊपर भी श्री अरविंद ने नंबर ऑफ पोएम्स लिखी हैं, मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य, टुमारो वी कैन रीड सम ऑफ दीज पोएम्स मार्कंडे और मांडव्य पे। मांडव्य ऋषि की भी यही कहानी है कि वो एक रात सुनी सबने कहानी, तो आई नीड नॉट रिपीट, ओके ओके। सो मांडव ऋषि हैं, तो एक बार एक चोर राजा के घर में चोरी करके ले जा रहा है, तो पीछे सिपाही पीछे पड़े हुए हैं, अब क्या करे, उसको पता चल गया सिपाही पीछे आ रहे हैं, तो मांडव ऋषि ध्यानस्थ है वहां पे, वो पोटली डाल के चला जाता है, भाग जाता है। और ये सिपाही आते हैं, मांडव ऋषि को देखते हैं, अच्छा आंख मूंद के तुम ध्यान कर रहे हो, चोरी करके उठा के ले जाते हैं। राजा उस समय शयन कक्ष में जा रहा है, कहता है हमने चोर पकड़ लिया जो चोरी कर रहे, डाल दो उसको सूली के ऊपर। तो पनिशमेंट क्या था उस समय, सूली पर आप सो जाइए, सोएंगे क्या, मरेंगे, अगले दिन जब आएगा तो एक लाश पड़ी होगी। सुबह ये लोग आते हैं, खोलते हैं दरवाजा तो मांडव ऋषि ध्यानस्थ है, तो ये घबरा जाते हैं, कहते हैं ये तो कोई साधारण चोर नहीं है। राजा को बुलाते हैं, राजा देखता है तो रिकॉग्नाइज करता है, कहता है अरे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। तो मांडव ऋषि को कहता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो मांडव ऋषि कहते तुम हो कौन? मैं यहाँ का राजा हूं। तो मैंने पनिशमेंट दिया। अच्छा तुम इतने बड़े हो कि तुमने मेरे लिए क्या होने वाला उसका विधान बना दिया, तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी है। वो कहते क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यम के पास जा रहा हूं कि उसने ये विधान बनाया क्यों, क्या विधान है, मेरे जीवन में ये क्यों लिखा था। तो यमराज कह देते हैं आपने इतने 100 साल पहले या कितने जन्म पहले तुमने एक बटरफ्लाई को, छोटे बच्चा जिसने सुई गढ़ाई थी, तो तुमको उसका फलस्वरूप। तो कहते हैं एक बच्चे ने अज्ञान में एक सुई चिबा दी एक तितली को, उसके लिए ये पनिशमेंट। अब उस समय वो कहते हैं मैं अपने तपोबल से इस नियम को बदलता हूं। तो इसका गूढ़ तत्व क्या है कि संसार में दो नियम चलते हैं पैरेलल। एक जो कठोर नियम है यम का नियम, यम डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, टका शेर खाजा टका शेर भाजा, कम्युनिस्ट मॉडल, अच्छा हो बुरा हो एवरीबडी मस्ट गो थ्रू द। दूसरा जो सूर्य का नियम सत्य धर्माय दृष्टे, वो चीजों को सत्य की दृष्टि से देखता है। और अब तक सृष्टि उस मृत्यु के नियम के अधीन चल रही थी। ये सावित्री तो बहुत विस्तार का विषय है, लेकिन धीरे धीरे अब सूर्य का नियम द डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ इज ए लॉ ऑफ हार्मनी एंड डिलाइट, वो ऑपरेट करनी शुरू हो गई है। और इस कारण धीरे धीरे हम देखें कि और अधिक अधिक अधिकाधिक अपवाद मिलते जाएंगे जहां लॉ ऑफ कर्मा एंड इट्स फिक्स्ड कॉन्सिक्वेंसेस नो मोर देयर। आप भौतिक स्तर पे देख लीजिए, अब पहले रतौंधी होती थी लोग अंधे हो जाते थे, है ना। हम लोग क्या कहते हैं कर्म का सिद्धांत है, वैज्ञानिकों ने क्या कहा, आप देखिए रिलीजन और साइंस का जो कन्फ्लिक्ट। रिलीजन ने तो कह दिया भाई तुम्हारे कर्म थे, विज्ञान ने क्या कहा, नहीं नहीं अन्वेषण करो, नहीं कुछ नहीं गाजर खाने से ठीक हो जाओगे, विटामिन ए की कमी है, ठीक हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस इज गॉन। कैसे हुआ, ज्ञान के बढ़ने से कर्म का जो फिक्स्ड लॉ था वो खत्म हो गया। मृत्यु क्या चाहती, ज्ञान नहीं बढ़े, क्योंकि अगर ज्ञान बढ़ा तो मृत्यु का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और वही ज्ञान अंत में कहां ले जाता है, प्रेम के द्वार पर, वहां तो फिर एवरीथिंग बिकम्स डिफरेंट। तो ये बहुत, इस पर मैंने कई टॉक्स दी हैं, आपको और वहां पे मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेट के ऊपर। ओके सब लोग रुके, जय मां।